ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को सफल बनाने का सभी का साझा और ऐतिहासिक दायित्व है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल का कथन। राजनीतिक स्थायित्व और समृद्धि के लिए निर्वाचन में सहभागी सभी मतदाता को प्रधानमंत्री कार्की का आग्रह। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचार प्रसार के समय आज मध्य रात 12 बजे से हुई खत्म। सभी मतदान केन्द्र में निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी परिचालित हो चुके है और बड़ी लहर आना बाकी है, ट्रंप ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा है कि आगामी फागुन 21 को होने वाला प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय और प्रगति की यात्रा को नए तरीके से परिभाषित करते हुए नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आज राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव पिछली उपलब्धियों की रक्षा और संवर्धन करते हुए नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ने की युगीन आवश्यकता है। और राष्ट्रपति पौड़ेल ने यह भी कहा कि यह चुनाव हमारे राजनीतिक इतिहास की एक जटिल परिस्थिति से निकालने के रूप में होने जा रहा है। यह चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की यात्रा को और व्यापक, विश्वसनीय तथा सुदृढ़ बनाने का ऐतिहासिक अवसर भी है। इसलिए इस चुनाव को सफल बनाना हमारा साझा कार्य और ऐतिहासिक दायित्व है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि देश को राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए चुनाव में भाग लेने के लिए सभी मतदाताओं से आग्रह किया है। आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कार्की ने फागुन 21 बृहस्पतिवार के दिन चाहे किसी और काम को छोड़कर ही क्यों न हो अपने मतदान केन्द्र में जाकर मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री कार्की ने बताया कि मतदान केवल चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाने और किसी को जिताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने और अपने बच्चों के भविष्य को कैसे आकार देना है इसका निर्णय भी है। प्रधानमंत्री कार्की ने सभी से चुनाव के दौरान शांति और अमन बनाए रखने का अनुरोध भी किया। इसी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन का प्रचार प्रसार निषेध अवधि आज रात 12 बजे से शुरू हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान से पहले 48 घंटे से लेकर मतदान पूरी तरह समाप्त होने और मतदान केंद्र बंद न होने तक प्रचार प्रसार निषेध अवधि यानी मौन अवधि निर्धारित की गई है। आयोग ने बताया कि मौन अवधि के दौरान उम्मीदवार, राजनीतिक दल और संबंधित व्यक्तियों को पालन करने वाले विशेष आचार संहिता के नियम लागू होंगे। मौन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रचार प्रसार, राजनीतिक विज्ञापन, सोशल मीडिया पर प्रचार, किसी भी तरह का संदेश प्रसारण या निर्वाचन प्रचार से संबंधित कोई भी कार्य करना निषेध है। मतदान के 48 घंटे पहले से मतदान स्थल तक 300 मीटर के दायरे में राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रचार प्रसार सामग्री को हटाना अनिवार्य होगा। इसी तरह सोशल मीडिया, ऑनलाइन, प्रिंट या किसी अन्य माध्यम से राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में किसी भी संदेश, सूचना या प्रचार सामग्री को पोस्ट या शेयर करना निषेध है। आयोग का विश्वास है कि आचार संहिता का ईमानदारी पूर्वक पालन और कार्यान्वयन सजग मतदाता तैयार करने और निर्वाचन की निष्ठा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा है कि निर्वाचन की बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी सुरक्षा तंत्र और संबंधित निकायों के बीच समन्वय बना हुआ है, जिससे भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन होगा। निर्वाचन सुरक्षा के विषय में आयोग के पदाधिकारी और गृहमंत्री अर्याल के बीच आज हुई चर्चा में गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि निर्वाचन प्रचार प्रसार निषेध अवधि की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाई गई है। इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने बताया कि मौन अवधि में आचार संहिता का पालन करने के लिए सूक्ष्म रूप से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के पालन को प्राथमिकता दी गई है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लास और उमंग का संचार करने वाला पर्व फगुआ अर्थात होली पर्व आज पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में परंपरागत रूप से रंग और अबीर खेलकर मनाया गया है। होली पर्व के अवसर पर आज हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक विदा दी गई है, तो वहीं तराई के जिलों में कल सार्वजनिक विदा दी गई है। रामेछाप में चुनाव सामग्री और कर्मचारियों को लेकर जा रही गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसे में अन्य पांच लोग घायल हुए हैं। आज दोपहर हुई इस दुर्घटना में नेपाल पुलिस के एएसआईआरपी यादव और मतदान अधिकारी डोर प्रसाद घिमिरे की मृत्यु हो गई है, पुलिस ने जानकारी दी। दुर्घटना में घायल पांच लोगों को उपचार के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से काठमांडू भेजा गया है। यह जानकारी जिला पुलिस कार्यालय रामेछाप के पुलिस निरीक्षक राजन प्रसाद तिमल सिन्हा ने दी। रामेछाप नगर पालिका दो स्थित वार्ड कार्यालय के पास स्वामी डाड़ा भीड़ से गाड़ी गिर गई थी। संयुक्त अरब अमीरात से ईरान के हमले में गोरखा के भीमसेन थापा गांव पालिका वार्ड नंबर 7 बोरलांग टाटी के दिवस श्रेष्ठ की मृत्यु हो गई है। अबू धाबी स्थित नेपाली दूतावास के अनुसार 29 वर्षीय दिवस श्रेष्ठ का कल निधन हो गया। अबू धाबी स्थित जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन को निष्क्रिय करने के दौरान उनकी मृत्यु हुई, ऐसा अबू धाबी स्थित नेपाली दूतावास ने जानकारी दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी ईरान में बड़ी लहर आनी बाकी है। वह न्यूज चैनल CNN को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने ईरान पर हो रहे हमले तेज करने की चेतावनी दी। इसी बीच इस्फहान में ईरान के न्यूक्लियर साइट पर नए धमाके हुए। दरअसल ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने एक संक्षिप्त साक्षात्कार के दौरान ईरान में नई शासन व्यवस्था को लेकर कई विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। सत्ता हस्तांतरण की अपनी योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के विशिष्ट सैन्य बल, जिनमें कई गार्ड के अधिकारी भी शामिल है, ईरानी जनता को अपने ओर खींचना है। अगर आप इस बारे में सोचे तो वे सचमुच जनता के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। फिर उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन का एक बिल्कुल अलग मॉडल पेश किया, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला में अपने अनुभव का बार बार जिक्र किया, जब उन्हें डेल्टा फोर्स की एक टीम को मादुरो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने कहा है, मुझे लगता है कि हमें वेनेजुएला में जो किया वह एक आदर्श है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को सफल बनाने का सभी का साझा और ऐतिहासिक दायित्व है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल का कथन। राजनीतिक स्थायित्व और समृद्धि के लिए निर्वाचन में सहभागी सभी मतदाता को प्रधानमंत्री कार्की का आग्रह। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचार प्रसार के समय आज मध्यरात 12 बजे से हुई खत्म और सभी मतदान केंद्र में निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी परिचालित हो चुकी है। और बड़ी लहर आना बाकी है, ट्रंप ने दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।